वासुदेव सर्वत्र में उन नाक तू उठाई, अंतर बार संग है नानक काई दुराई। वो वैर न करिए काहू, कट कट अंतर ब्रह्म समाहू। वासुदेव जल थल में रविया, गुरु प्रसाद मिले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जोक हुनते। वरन चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। लेखे कते न छूटिए, खिन खिन भूलन हार। बक्सन हार बक्सले, नानक पार उतार। लून हरामी गुनागार, बेगाना लप मत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताई न जानत तत। लाहा माया कारणे, दैदिस टुंडन जाई। देवन हार दा तार प्रभ, निमक नमन बसाई। लालच झूठ बिकार मोया, संपे मन माए। लंपट चोर निंदक मा, तिन्हू संग बिहाई। तुद पावे ता बख्श ले, खोटे संग खरे। नानक पावे पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। हाथ बीत खेलत हसत, परमे जन्म अनेक। पव जलते काडो प्रभु, नानक तेरी टेक। खेलत खेलत आयो, अनिक जोन दुख पाई। खेद मिटे साधु मिलत, सतगुर वचन समाई। हिमा गई सच संचियो, खायो अमृत नाम। हरी कृपा ठाकुर पई, आनंद सुख विश्राम। खेप निभाई बहुत लाभ, कराए पतिवंत। करा दिलासा गुर दिया, आई मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप। नानक सो उठराइए, जी कट कट रवे आप।
जुगाद गुरे न मैं, सत गुरे न मैं, श्री गुरुदेव न मैं। दास दोनों हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मथा टेकदे हुए अपने गुनाहां दी माफी लई अरदास बेनती करदा है। ओ गुनाह जो करोड़ों ही जन्मां तो मैं कट्ठे करी बैठा हूं, संगत दी समर्था है बख्शन दी। बख्शन दी कृपालता करो, संगत दे बख्शे नू गुरु साहब भी बख्श देंदे।
वासुदेव सर्वत्र में उन नकत उठाई, अंतर बार संग है नानक काई दुराई। वैर न करिए काहु, कट कट अंतर ब्रह्म समाहु। वासुदेव जल थल में रविया, गुरु प्रसाद मिले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते। वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता।
लेखा कते न छूटिए, खिण खिण कुल्लड़ हार। बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। आज दे इस रूहानी सत्संग ले गुरु साहबा ने जो शब्द बख्शिश किया है वो है बख्शनहार। वासदेव सरबत में उन ना कतहु उठाई, अंतर बाहर संग है नानक काई दुराई। वास और देव, वास कहंदे ने रहण वाले नु, जिसने रहना है, जो नित है, यूनिवर्सल ट्रुथ। देव प्रकाश, रहण वाला प्रकाश, सदा नित प्रकाश, सब नु आधार देण वाला प्रकाश। वासदेव, गुरु नानक साहब ने उस अकाल पुरख परम पिता का जो नाम रखा है इस शब्द विच, वासदेव रखा है। गुरु नानक देव दी बाणी जो है, हर लफज रूहानियत का वह गहरा भेद ला करके प्रगट होती है, जिस दे विच कोई भी भरम बाकी नहीं रहिंदा। कहंदे ने सत नाम, सत कौन है जिसने सदा ही रहना है, जिस दे विच झूठ दा कोई भी अंश नहीं, सब नू आधार देण वाला सत नाम। उसी नू इस शब्द दे विच वासदेव क्या है। वासदेव सरबत में ये रहण वाला प्रकाश जो कि परमात्मा है, ये सब दे अंदर मौजूद है। यानी परमात्मा कौन है, किस तरीके दे नाल सब दे विच व्याप्त हो रहा है, किस तरह सब दे विच रम रहा है, किस तरह सब नू आधार दे रहा है, किस तरह सब नू चला रहा है, किस तरह सब नू खत्म कर रहा है, और उसके बाद फिर किस तरह यह रचना जो है दृष्टिगोचर की जा रही है। कहंदे ने एक प्रकाश है, उन ना कतहु उठाई, उसके बगैर कोई भी जगह नहीं है। यानी जड़ और चेतन सब दे अंदर ये प्रकाश मौजूद है, अंतर बाहर संग है नानक काई दुराई। केंद्रे अंदर और बाहर इस तो स्पष्ट है कि सदा हजूर है। काई दुराई, दुराई केंद्रे छुपाण, क्यों छुपा रहे हैं तू, इसका एक भाव है, इस दे अंदर भेद है कि असी इस जगत दे भी छुपांदे किसनू हैं और प्रगट किसनू करते हैं। समाज की मर्यादा दे विच आ करके यह जीवात्मा जदों कोई किरिया नू अपनांदी है किसी भी वस्तु या संबंध के मुतलक, तो उसनू प्रगट कर दी है, उसका प्रदर्शन कर दी है, चार बंदिया दे सामने, समाज दे सामने छाती ठोक करके मुंह उजला करके उस किरिया नू कर दी है। कारण समाज की मर्यादा दे अधीन है। छुपांदी किसनू है जड़ी मर्यादा तो बाहर है। दे अनिक पर्दे में पर दारा संग फाके, चित गुप्त जो लेखा मांगे तो कौन तेरा पर्दा टाके। इस तुक विच स्पष्ट हो जाता है कि कोई पूंजी खर्च कीती जा रही है किस जगह, जड़ी समाज की मर्यादा तो बाहर है। प्राय रूप की आसक्ति कई पर्दे ढक करके तू टाक रहे हैं, छुपा रहे हैं, कारण समाज इस चीज की इजाजत नहीं दिंदा। केंद्र जदो परमात्मा वासदेव तेरे को हिसाब लेगा इन्हों पर्दियां का, उस वक्त तेरे पर्दे नु कौन रखेगा। विचार करने वाली गल है इस दूसरी टुक दे विच कि किस चीज नु छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। यानी कि असी समाज की मर्यादा तो बाहर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज छुपा रहे हैं, कोई ऐसी गल कर रहे हैं जिस चीज की इजाजत सानू दिती नहीं गई इस दो पैर की जून दे विच आ करके, यानी कि कोई ऐसी गल है उस दे उपर विचार करना है। सारा शब्द जड़ा है इसी चीज का निर्देश करता है कि तू की करन वास्ते आया है, किस चीज नू तू करना है और केड़ा काम करन दे बाद तैनू ए पर्दे की लोड़ पै जांदी है, यानी कि काई दुराई छुपाई फिरदा। कहिंदे छुपांदा क्यों है, वह तो अंदर बार सदा तेरे नाल प्रकाश दे रूप दे विच मौजूद है। छुपाइए तां जो किसी होर मंडल दे विच किसी होर जगह दे विच बैठा होवे। सो आज दा मजबून जड़ा है बख्शनहार दा, यह कौन बख्शा जाएगा और किस तरीके दे नाल बख्शा जांदा है, यह बिल्कुल गुरु नानक साहब एक उदाहरण दे रहे, एक मिसाल दे रहे इस जगत की, कि इस जगत की मिसाल नूं रख करके जदों असीं रूहानियत दे नजर दे नाल देखांगे ते आज दा मजबून जड़ा है स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ हथ उच्चे चुकन दे नाल, सलाम करन दे नाल, मत्था टेकन दे नाल ना कोई बख्शिया जा रहा है ना कोई बख्शिया जाता है। ये काल दी नगरी है, असी उस नगरी दे विच कैदी हाँ और एक कैदी नूं जो छूट दिती गई है एक सीमा तक, एक दसवां द्वार दिता गया है इस शरीर दे अंदर ही, ये छूट दिती गई है जदों भी जीवात्मा इस जन्म दे विच आ जाती है बुद्धि दे तत्व नूं लै करके। अगर बुद्धि दा तत्व नहीं होएगा तो जून भी सृष्टि का सिरमौर होने के बावजूद किसी काम की नहीं, किसी लेखे नहीं, यह घर वाले ही पागलखाने दे विच दाखल करवा आणगे। तो बुद्धि तत्व का भरपूर मात्रा दे विच होना बहुत ही जरूरी है, ताही जा करके यह जीवात्मा जड़ी है इस दो पैर की जून दे विच इस दसवें द्वार ते पहुंचण दा काम कर सकती है। सो जड़ा मजबून है मिसाल दे रूप दे विच इस जगत दे विच गुरु नानक साहब स्पष्ट करदे ने कि उपकार किया जाता है। एक व्यक्ति किसी की मदद करता है, सहायता करता है, इस नूं असी इस जगत दे विच उपकार दी संज्ञा दिंदे हां। जिस दी मदद कीती गई वह उपकृत है। हुण इस नगरी दे विच कोई भी चीज सानू फ्री दे विच नहीं मिलदी, भुगतान करना पैंदा है। हालांकि जिस दी सहायता कीती गई उसने सहायता मंगी नहीं है, पर सहायता करन वाले ने यह अपना फर्ज समझिया, कर्तव्य समझिया कि मैं मनुख हां और मनुख की मदद करनी चाहीदी। कोई दीन है, दुखी है, अभाव दे विच है, किसी वस्तु की उसनू लोड़ है, मैं समर्थ हां, मेरे को समर्था मिली हुई है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो किस तरीके दे नाल करिए, उसकी मदद करके। और अगर उसने कोई इच्छा या कामना रख करके मदद की है, उसकी इच्छा और कामना अवश्य पूरी होगी। और अगर उसने निष्कामी होकर के उसकी मदद कर दी है, तो विचार करके देख लो, वह अपनी आत्मा का उद्धार करने के लायक बन जाएगा। यह तो मदद करने वाले का मजबून हो गया। हुण जिस दी मदद कीती गई है और किस तरीके दे नाल इस दा बदला चुकाएगा, इस काल दी नगरी दे विच शास्त्रां दे विच उपदेश ऋषि मुनिया ने बिल्कुल स्पष्ट दिते ने, असी इन्हां उपदेशां नूं भुल चुके हां। जो उपकृत है तां जन्म, जब तक उस दी स्वासां दी पूंजी चल रही है, उपकार करन वाले दा एहसान मन, कृतज्ञ होना, सेवा दा भाव होना, उस दे प्रति वफादार होना और हर वक्त उसकी सहायता मदद लई तैयार पर तैयार रहना, यह है बदला चुकाव उस उपकार करन वाले दा जिसने कि उसका उपकार किया है। इस नूं असी इस जगत दे विच उपकृत कहंदे हां कि किसी का उपकार किया गया। और असी की देखते हैं इस वक्त जो समा चल रहा है, जिसका उपकार किया जाता है वह उपकार नूं भुल जाते हैं। हुण भुलण का नियम जो है इस जगत दे विच कलयुगी बड़े भरपूर मात्रा दे विच चल रहा है, और जड़े भुल जाते ने उसका भी उपाय ऋषि मुनिया ने बिल्कुल स्पष्ट दिता है कि अगर तू भुल गया है तो तू किरतगन है। किरतगन कहंदे ने पाप नू। इस जगत दे विच किरतगन नू पंजाबी दे विच लून हरामी भी किया जाता है, कि लून हरामी कौन है, जिसका लून खादा, जिसने तेरी मदद की उस तो विमुख हो जाना, उसके वफादार ना होना, उसके खिलाफ चलना, सेवा का भाव ते दूर रहा, उसके रस्ते दे विच रुकावटा खड़िया करनिया, इसका मतलब की है कि तू कृतगन लून हरामी है, यानी कि लून हरामी नू पाप दी संज्ञा दिती जांदी है। हुण पाप तो मुक्त किवें होएगा, उसका भी उपचार इस जगत दे विच मौजूद है। जप तप संयम इंद्री सहित, इंद्रियां नू वस विच कर कर ऐसे तप नू कमाणा, उस दे बाद इस जगत दे विच परोपकार पश्चाताप नू मुख रख करके, यानी कि अगर किसी ने याद कराता कि किसी ने तेरा उपकार कीता सी, पश्चाताप हो गया, ते इना विधियां चो कोई भी तरीके नू अपना करके, यानी कि दूसरिया का भला करके और उस पहला करन वाले दे प्रति सेवा दा भाव वफादारी नू लै करके, तू अपने इस कृतगना दे दाग नू धो सकदा, यानी के लून हरामी दी दित्ती गई संज्ञा इस समाज दी तो तू बच सकदा, यानी किरत गंदा तो असी बच सकदे आ उपकृत होण दे बावजूद अगर असी पाप कमा लिया तां। दूसरी तरफ एक मजमून हो रहा है इस दे नाल, एक तो किसी ने उपकार किया बिना मंगे बिना किसी दे कहे अपना फर्ज समझ कर, एक कर्ज दे रूप दे विच लिया जांदा है इस जगत दे विच। तो कर्ज दा जड़ा अधिकार है पिछले युगां दे विच सिर्फ ब्राह्मण नूं सी, ब्राह्मण ही दान लैण दा अधिकारी सी, जड़े छत्री वैश्य और शूद्र सन ओ कदी भी दान नहीं सन लैंदे। क्यों? उस दा कारण कि छत्री नूं सारी उमर उस पहले दान करन वाले दे प्रति वफादार होना पैंदा सी। तो पहली गल तां ओ कर्ज लैंदे नहीं सन, अगर लैंदे सन किसी अवस्था दे विच सानूं कर्ज लैण दी लोड़ पै भी गई ते उस कर्ज नूं चुकाया जा सकदा है। कर्ज चुकाना ही यह नियम है शायद संबत जो कि उपदेश दिता गया। तो कहंदे ने जब तकन तू जिंदे जी इस कर्ज नूं चुका नहीं ना देगा तब तकन तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। और फिर किस तरीके नाल होएगा अगर जिंदे जी तू नहीं चुकाया? तो अगलियां तुकां दे विच उपदेश दिंदे ने कि अगले जन्म दे विच आ करके तू मां बाप भैण भाई संबंध यानी कि उस घर दे विच बैल घोड़ा ऊंट गधा किसी निचली जून दे विच भी आ करके तैनू उस कर्ज दा भुगतान देना पेगा जड़ा कि तू इस पहले व्यक्ति कोलों लिया है अपनी जरूरत नू पूरा करन वास्ते। हुण उस तों अगे उपदेश देंदे ने कि अगर कोई इस कर्ज तो बचना चाहे तो उसका की उपाय है? तो उसका सारियां तुकां दा संस्कृत दे शलोक हन शास्त्रां दे विच, इत्थे अगर शलोक पढ़ के व्याख्या देंगे तो कई घंटिया की जरूरत पै जाएगी। तो गुरु नानक साहब सारी बाणी का सिर्फ निचोड़ ही साड़ी झोलिया तकसीम करते हैं ताकि असी उस नू थोड़े समय दे विच लाभ नू प्राप्त कर सकीए, जानकारी सानू हासिल हो सके। यानी कि ऋण का बदला सिर्फ ऋण नू चुकाण दे नाल है, चाहे जिंदे जी चुका लै चाहे अगले जन्मां दे विच निचली दुनिया दे विच आ करके चुका, इसका कोई भी उपाय नहीं है। पर उस दे बावजूद भी अगर तेरे कोल ऋण नहीं है तो कुछ उपाय ऋषि मुनिया ने स्पष्ट किए ने। वो किस तरीके दे नाल कहंदे ने कि तेरे कोल अगर कोई कीमती वस्तु है, मकान है, सोना है या कोई भी ऐसे कोई चीज है जिस नूं देण दे नाल तेरा कर्ज उतर सकदा है, ते कहंदे ने अख बंद करके दे दे। उस दे नाल भी अगर तेरा कर्ज नहीं उतरदा ते कहंदे ने तू उस नूं लिख करके दे दे ताकि उसकी तसली हो जाए। अगर उस दे विच भी तसली नहीं होंदी ते कहंदे ने अगर तेरी स्त्री है ते उस स्त्री नूं तू बंधन रख दे उस दे पास, और अगर तेरा पुत्र है ते पुत्र नूं भी बंधक रख दे या समाज दे विच उस नूं वेच करके उस देण वाले दे कर्ज नूं चुका दे। अगर उस दे बाद भी देण वाले दी तसल्ली नहीं होंदी, तेरे उत्ते केस करना चाहंदा ते अदालत दे विच पेश होकर के अपने उत्ते डिग्री करवा लै, जज नूं कह कि मैं इस दा देणदार हां मेरे उत्ते डिग्री कर दो। अगर उस दे बाद भी देण वाले दी तसल्ली नहीं होंदी ते कहंदे ने उस दा तू नौकर हो जा, अगर नौकर होकर के उस दे कर्ज नूं चुका सकदा ते कहंदे ने फिर भी तू चुका लै। अगर फिर भी देण वाले दी तसल्ली नहीं है, वह तैनू जेल करवानी चाहता है, तो साध संगत जी कहंदे ने तू हसदिया होया जेल नूं भी कबूल कर लै, पर एक गल नूं याद रखी, भुलिया भी ऐसा काम ना करी कि देण वाले दा प्रतिकार कदी भी ना करी। अगर उसकी तसली नहीं हुई, उसका तू प्रतिकार किया, अगले जन्मां दे विच आकर के तैनू इसका भुगतान देना पेगा। तो कर्ज का मुक्ति किस तरीके नाल हो सकती है? कर्ज नू चुकाण दे नाल। असी क्या करते हैं? असी देना है दुध नाल धो करके देना है, व्याज समेत देना है। अगर देण वाले की तसली नहीं हुई, देण वाले का भजन खादा गया, वह परमार्थी रस्ते तो अलग हो गया, तो उसनू कौन बचाएगा? उसका भुगतान कौन करेगा? विचार करके देख लो, ये सारा भुगतान ऋषि मुनिया ने इस शास्त्रां दे विच बिल्कुल स्पष्ट किया है। यह सीगा कर्ज और उपकार का बदला। हुण रूहानियत दे विच गुरु नानक साहब कहंदे ने इस मिसाल नूं तकसीम करके वेख कि किस तरीके दे नाल तू कर रहा है और किस तरीके दे नाल तू छुट सकदा है। उपकार की है? उस अकाल पुरख वासदेव दा इस जीवात्मा नूं दित्ती गई दो पैर दी जून बुद्धि तत्व समेत, यह है उपकार उस अकाल पुरख दा सानू दिता होया। ते उपकार दा की बदला चुकाण वास्ते किया गया है? शास्त्रां दे विच ऋषि मुनिया ने की उपदेश दिता सी? विचार करके देखो, वफादारी सेवा दा भाव ता जन्म जब तक श्वासा की पूंजी चल रही है उस दे प्रति वफादार रहना, यानी कि जो हुक्म कीता अकाल पुरख गुरु परमात्मा ने इस जगत दे विच आ करके पल पल उस दे उपर कुर्बान हो जाना, ए सीगा उस दा भुगतान नहीं ते तू लून हरामी किरतगन बन करके इस जगत दे विचो जाएगा और अगले जन्म दे विच फिर तू निचली जूनिया दे विच भ्रमण करेगा। ए सीगा असी उस उपकार दा बदला दे रहे हैं उस गुरु परमात्मा नू। दूसरी तरफ कर्ज दी गल है, कर्ज की सीगा, कर्ज है ए श्वासा दी पूंजी, ए श्वासा दी पूंजी कर्ज उस अकाल पुरख परमात्मा दी उसी नू भेट देनी है। ए दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप, कबीर जी बाणी च बिल्कुल स्पष्ट करते ने, कहंदे ने दम श्वासा दी पूंजी ए कर्ज है तेरे उपर, इस नू हीरा और लाल क्या है, हीरा और लाल पत्थर ने, इस जगत दे विच कीमत हो सकती है पर इस जीवात्मा दा कुछ भी पला नहीं कर सकते। तो श्वासा दी पूंजी की हैगी है, ए इस तो भी वध के ओ चीज है जड़ी परमात्मा दा रूप ही इस नू दवा सकती है। ते कहंदे ने गिण गिण के, गिण लफज दा इस्तेमाल क्यों कीता, क्योंकि कर्जा जड़ा है गिण के ही चुकाया जा सकता है। ए नहीं है कि किसी ने तोल करके कर्ज दिता और तोल करके तुसी उस नू दिया है, अज तक ये मजबूर नहीं ये पूरा हो सकिया और इसी कारण असी कर्ज नहीं चुका सके और अज भी असी इस जन्म दे विच बैठे हैं और भुले बैठे हैं। लेखा कते ना छूटिए खिन खिन भुलन हार, पल पल ए जड़ा कर्ज सी ना श्वासा दी पूंजी जड़ी मिली सी ए पल पल असी उस गुरु परमात्मा नू भेट करनी सी। किस तरीके दे नाल कि श्वास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, ए रूहानियत दा विषय है। बिल्कुल स्पष्ट कहंदे ने श्वास लैंदे होए और ग्रास यानी के इस मुंह दे विच ग्राई यानी के भोजन लैंदे होए भी तू ए पूंजी नू भुल ना जाई, तेरे उपर कर्ज है तू उस नू पल पल चुकाना है, ताई जा करके तू बख्शिया जाएगा। बख्शन दा केड़ा मजबून सी, इस जगत दे विच जीवात्मा आ करके जदों भी कार व्यवहार करेगी और छुट नहीं सकती, कुछ ना कुछ उस नू ए पूंजी रास खर्च करनी पेगी। किस जगह मां दे उपर, बाप दे उपर, संबंधियां दे उपर, इस शरीर दी परवरिश करन वास्ते। अगर शरीर नू रोग लग गया, शरीर दी परवरिश ठीक ना हुई, विचार करके देख लो, एक किताब दे विचो स्त्री या पुरुष दी कोई तस्वीर लो और अपनी तस्वीर नू उस तस्वीर दे विच फिट करन दी कोशिश करो, एक पासो खिच के लगाओगे दूसरे पासे नंगी हो जाएगी। कारण की है कि असी शरीर नू भी बेशरीर करके बैठे हैं इस जगत दे विच, ते ए श्वासा दी पूंजी किथे खर्च की रही है, इस जगत दे विच भोग और विलास दे उपर, यानी के इस जगत दे भौतिक सुखां दे उपर जदों भी ए रास खर्च कीती जांदी है और लून हरामी दी संज्ञा उस नू दित्ती जांदी है और जड़ा कुछ खर्च जरूरत दे रूप ही यानी के गुजारे मात्र दी प्रविष्टि इस जगत दे विच करनी पैंदी है, कुछ ना कुछ खर्च करना पैंदा है। जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोई, हर एक दाने दे विच जीवात्मा मौजूद है और आत्मा आत्मा नू ही खा करके जिंदा है, ते इस दा भुगतान खिन खिन पुलन हार, खिन खिन असी ए गुनाह कर रहे हैं, ए गुनाह जब तक बख्शे नहीं जानगे तब तक ए जीवात्मा कितने भी महान तप कर ले, महान जप कर ले, कितने भी महान सतगुरां दे चक्कर कट ले, बख्शी नहीं जा सकती। कौन बख्शिया जाएगा जड़ा कि अपने जींदे जी कर्ज नू चुकाण लई उदमशील है और संसार दे विच गुजारे मात्र दी प्रविष्टि करदे होए अपने संसार दा कार व्यवहार करदे होए जिसने उपकृत कीता है उस दे प्रति सदा वफादार रहिंदा है। इस जगत दे विच अगर असी इन्हां नियमां नू याद कीता हुंदा, गुरु शिष्य दी परंपरा दे विच समाज दी ये मर्यादा दित्ती गई सी और उस मर्यादा दा अंत की सीगा राम का राज, राम राज दी संज्ञा दित्ती गई सी इस हिंदुस्तान नू, असी विदेशी मुल्का दी गल नहीं कर रहे। इस जगह राम राज किस तरीके दे नाल स्थापित हो गया, क्योंकि राम ने एक गुरु दे रूप दे विच प्रजा अपनी शिष्य नू ए उपदेश दिता सी कि तुसी किस तरीके दे नाल अपने गुरु नू ए दिता गया कर्ज जड़ा चुका सकदे हो और प्रजा ने जदों अपने गुरु दे हुक्म नू मन्या सी ते अंत समय दे विच ओ अपनी पूरे राम राज पूरी नगरी नू ही विष्णु दा अवतार सन विष्णुपुरी दे विच लै गए। गुरु नानक साहब जदों गए सन अयोध्या दे विच, अयोध्या दे बनारस दे कोल ही ए जगह पैंदी आ, उत्थे जदों उन्हां ने विचरण कीता ते ब्राह्मणा दे नाल सवाल जवाब होए ਵੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫੰਦਾ ਫਾਸੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਅੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਜੂਨਾ ਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਜੀਵਾਤਮਾ ਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਪੱਧਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਤਨਾ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਾਈ ਜੀਓ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਿਰਤਗਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਕਿਨ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਸੂਖਮ ਜਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਕਿਰਤਗਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਦੇਵ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੈਰ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਦੇਵ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ।
ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਵਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਔਰ ਥਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਰਨ ਸਾਰੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 9 ਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ 9 ਦਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 9 ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਇਸ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਪਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਟਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਪਲੇ ਪੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਝੂਠਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ? 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਆ ਝੂਠਾ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਤੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੂਤਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਔਰ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਯਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਆ ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਭ ਬਦਲਾਂ ਝਾਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਚੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਚੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਕਿੱਚੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਏ ਕਿੱਚੜ ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ? ਕੈਦੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੈਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਧੜ ਬਦਲਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲਫਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਲਫਜ਼ੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤ ਔਰ ਧਰਮ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਪਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਯੁਗ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਕਰਕੇ। ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਵਰਨ ਚਿੰਨ ਸਗਲੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿਤਾ।
ਵਰਨ ਔਰ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿਤਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੂਸਰਾ ਹਰੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਵਰਣ ਔਰ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵਰਣ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
लेखे कते न छूटिए खिन खिन पूलन हार बख्सन हार बख्स ले नानक पारे उतार।
असी पल पल हर घड़ी जड़ा गुनाह कर रहे हैं उस परमात्मा तो विमुख हो करके उस दे नाल बेरखी करके उस दे नाल गद्दारी करके यानी के सेवा दा कोई भाव नहीं उस दी सत्संग तो चलाई जा रही इस किरिया दे विच भी असी रुकावट ही खड़ी कर रहे हैं ते विचार करके देख लो किस तरीके दियां भयानक रुकावटां खड़ियां करन दे बाद असी इस लेखे तो बच सकते हैं। ये विचार करन दा मजबूर है जड़ी संगत विचार करेगी इस नूं धारण करेगी ओही करजे नूं चुकाएगी और करजा चुकाण वाला ही छुट सकदा बगैर उसदे बख्शे कोई जा नहीं सकदा ते बख्शिया ओही जाएगा जिहड़े कर्ज नूं चुकाण दी कोशिश करदा।
लूण हरामी गुनेगार बेगाना लपमत
लूण हरामी किरतगन यानी के उपकृत होने दे बाद ए मनुखी जून लैण दे बाद असी उस तो विमुख हो करके बैठे हां उस नूं लूण हरामी या किरतगन कहा गया। किरतगन की ए गुनागार यानी के एक गुनाह है गुनाह कैसा है विचार करके देख लो कि बेगाना यानी के बेगाने हुए हैं उस परमात्मा तो दूर होकर के बैठे हैं उसनु असी याद नहीं करते उस दे प्रति साड़ी कोई आसक्ति नहीं। कहंदे ने अल्पमत अल्पमत कहंदे ने ओछी मत यानी के पुट्ठी मत नु धारण कीता है। पुट्ठी मत क्यों है क्योंकि बुद्धि इस वक्त जो है मन दे अधीन कर रही है जब तक मन दे अधीन ये काम करेगी ए ओछी मत ही रहेगी और असी लूण हरामी किरतगन गुनाहगार ही बने रहांगे। उस तो अगर असी बचना चाहते हैं तो इस मत नु सानू उस परमात्मा यानी के अंश आत्मा दे अधीन करना पड़ेगा।
जियो पिंड जिन सुख दिए तान जानत तत
जियो पिंड जिन सुख दिए जियो पिंड जियो कहंदे ने आत्मा नु आत्मा परमात्मा दा अंश है प्राण शक्ति उसकी दित्ती हुई है शरीर यानी के पिंड दिता ए शरीर दिता और शरीर दे सुख दिते कहंदे ने ए सारा कुछ हासिल करन दे बाद भी तान जानत तत तत कहंदे ने उस परमात्मा नु कहंदे ने उस परमात्मा नु वासदेव नु भुल करके बैठा ए किरतगन दी संज्ञा उन्हां ने बिलकुल स्पष्ट की थी जड़ी गुरु नानक साहब ने शुरू ची स्पष्ट करती थी।
लाहा माया कारने दे दिस टूंडन जाई
माया रूपी लाभ नु प्राप्त करने वास्ते कहंदे ने दसा दिशा चू दौड़दा फिरदा इस जगत दे विच बहुत सारिया जीवात्मा मौजूद ने जड़िया नाश्ता एक मुल्क च करदिया ने लंच दूसरे मुल्क च और डिनर उन्हां दा किसी तीसरे मुल्क विच हुंदा हुण विचार करके देख लो कितना ही धन उन्होंने एकत्रित कर लिया कितने साधन एकत्रित कर ले कितना मान सम्मान प्राप्त कर लिया क्या ये सारा कुछ अंत समय दे विच काम आएगा। जिसले आखिरी खिन में भई पराई एक खिन दे विच जदों आखिरी वेला आना ये सब कुछ पराया हो जाना और उस नूं पराए हो जाण वाली वस्तु नूं प्राप्त करन वास्ते ओ सवेर तो लै करके शाम तक दौड़ी भजी फिरदा।
देव निहार दातार प्रभ निमक नमन बसाई
देवन वाला वो दतार परमात्मा है कहंदे ने एक पल एक घड़ी लई भी तू अपने अंतर दे विच उस नूं वसांदा नहीं यानी कि जड़ी प्राण शक्ति मिली सी वह सारी दी सारी संसार वस्तु और संबंधा दे भोगा दे विच ही तू खर्च करी जा रहा तेरा उद्धार किस तरह हो सकदा।
लालच झूठ बेकार मोइया संपे मन मोह
लालच मोह बेकार इन्हां नूं अपने मन दे विच एकत्रित कर मन विच केड़ी तौलत इकट्ठी कीती जा रही है विकारां दी विकार केड़े ने चाहे कोई काम दा है चाहे लोभ दा है या काम दा है यानी कि ममता दे अधीन आ करके इस जगत दे विच जो कुछ भी असी वस्तु या संबंध नूं कायम करन दी कोशिश करदे हां प्राप्त करन लई कई तरीके दियां विधियां अपनांदे हां इह सारियां विधियां जिहड़ियां ने मन दे विच एकत्रित हुंदियां रहिंदियां ने और आखिरी समें दे विच दौलत तां नाल जांदी नहीं पर इह विधियां साडे नाल चलदियां ने। साध संगत जी इह विधि तो कोई बच नहीं सकदा जिस ढंग दे नाल माया संबंध कमाए हुंदे ने संबंध कोल बैठे तमाशा देखदे ने काडो काडो करदे ने जे सा निकल जांदा इक पल तेरे भी ओ स्त्री पुरुष कोई भी अपने घर उस मुर्दे नूं रखण लई तैयार नहीं कहंदे ने काडो लै चलो इस नूं जितनी भी जल्दी हो सके इस दा संस्कार कर दो विचार करके देख लो असीं उन्हां दे नाल ही प्यार करदे आं और अंत दे विच इन्हां नूं कायम करने वास्ते जड़े तरीके अपनाए सी ना उन्हां नूं पाप दी संज्ञा दित्ती जांदी है और वो पापा दी गंढ जड़ी है तेरे सिर ते रख दित्ती जांदी है उन्हां तो तू बच नहीं सकदा और जो कुछ तू हासिल कीता सी वो तेरे नाल नहीं चलदा ते तू बख्शिया किवें जाएगा भाई।
लंपट चोर निंदक महा तिन्हु संग बिहाई।
लंपट चोर निंदक महा जड़े सारा दिन निंदिया ही करते रहते ने, परमार्थी जीवन च रस्ते च रोड़े ही अटकाते रहते ने, कहते ने सारा दिन सारी उम्र तू उन्हां दी संगत दे विच ही बिताती, कदी भी उस अकाल पुरख परमात्मा दी संगत करन दी कोशिश ही नहीं कीती।
तुद पावे ता बस ले खोटे संग खरे।
अगर उस अकाल पुरख परमात्मा नु पा जाए तो बख्श दिंदा, कदों बख्शदा? हुण इस विचार करके देखो, इस तुक दा असी बड़ा ही गलत अर्थ कढ़िया कि ओ जिसनु भी चाहे बख्शदा, कोई शक नहीं यह मजमून उसदा है कि जिसनु चाहे ओ बख्शे, पर विचार करके देखो बख्शेगा किसनु? जड़े लून रामी बड़े होणगे, कृतगन उगड़े होणगे, निंदिया चोरी चकारी च बठे होणगे, जिहड़ियां तुकां च उपदेश दिता गया, जड़े इस नु धारण करके बैठे होणगे, ते क्या उन्हां नु बख्श दिता जाएगा? बख्शिया उसी नु जाएगा जड़ा उसनु पा गया, यानी के जिसने इन्हां चो निकलण दी कोशिश कर ली, विषय विकारा चो निकलन लग गया, निंदा चो निकल गया, किसे भैड़ी संगत च ना फसया, हर पल हर कड़ी उस परमात्मा दा कर्ज चुकान लग गया, ते ओही बख्शिया जाएगा, होर कोई भी नहीं बख्शिया जाना। इन्हां तुकां दा गलत अर्थ कढ़ के असीं अज तक नरकां दे विच बैठे।
नानक पावे पार गम पाहन नीर तरे।
और उसने पहाण दे बाद ही इस रूहानियत दा मजमून जड़ा उस जीवात्मा दे उपर पूरा उतारिया जांदा, यानी के विश परे संसार दे विचो पार निकलन दे काबिल बना दिता जांदा, यानी के मजमून जड़ा एक मेहनत दा है और एक दया दा है। दया कदो होगी? जो तू मेहनत करेगा। मेहनत कदो करांगा जी? जो मेरी दया होगी तेरे उपर। ते विचार करके देख लो, असि हाथ ते हाथ तरे बैठे कि दया होए दया होए, क्या दो पैर दी जून बुद्धि दा तत्व ला करके दया नहीं है? इस तो वड्डी दया और केड़ी होगी? ए प्राण शक्ति जड़ी है तीन लोग का मोल, ए तिना लोगों का मुल दे करके एक प्राण शक्ति यानी कि एक सांस नहीं मिलता, इस तो वड्डा कार्ज और केड़ा होगा जड़ा उस अकाल पुरख परमात्मा ने साड़ी चोलियां बिना मंगे ही सानू तकसीम किया, उसके बावजूद असि की हासिल कीता है, एक कित्थे खर्च कर रहे हैं? क्या उसके बाद भी यह कल्पना करके साड़ी जायज है कि असी बख्श दिते जावांगे या सचखंड पहुंच जावांगे? यह सारा मजमून इतना सस्ता आसान नहीं है जितना कि असी समझ करके बैठे हैं।
खात पीत खेलत हसत पर में जन्म अनेक।
खांदे पींदे हसदे खेलदे, कहंदे ने कई वेरी तेरे जन्म होए ने, यानी के मनुख दे जन्म दी इशारा कि कई करोड़ नहीं अनंत टाइम तो जदों भी यह जीवात्मा इस मुल्क विच आई है, अनंत वेरी तेनू इंसानी जामा मिलिया, और इंसानी जामे विच आकर के तू कीता की है? हसदा खेडदा सोंदा भोग करदा, सिर्फ इसी किरिया नू अपनाया और भरम दे विच ही अपने जीवन नू गवा बैठा, ते पार कदों उतरेगा तू?
पाँव जल ते काडे प्रभु नानक तेरी टेक।
गुरु नानक साहब कहंदे ने अगर उसी ककाल पुरख दी टेक लै ली जावे ते इस पाँव जल तो निकलन दे काबिल तैनू बनाया जा सकदा, पर असी टेक किस दी लई है? धन दी लई है। गुरु घर दे विच आ करके कुछ विशेष रिश्ते बना लैंदे आ, कुछ विशेष संबंध बना लैंदे आ, ईर्षा निंदा करके कुछ ऐसे तरीके अपना लैंदे आ, सोचदे आ कि असी बख्श दिते जावांगे या इस संसार तो पार निकल जावांगे। साध संगत जी, इन्हां संबंधां दा असी मुल्कां दे विच ही लाभ मिलदा। कलयुग दा कोर समय चल रहा, असी यह नहीं कह सकते कि इन्हां दा लाभ नहीं मिलता। अगर लाभ नहीं मिलता हुंदा ते जीवात्मा कदे भी एहो जिहा करतूतां नहीं करदियां। गुरु घर दे विच सब कुछ क्यों हो जांदा? इसका कारण इको ही है कि कुछ ना कुछ लाभ इन्हां नूं अवश्य मिलता। विचार करके याद रखना कि सब कुछ मिलेगा, इन्हां करतूतां दा एक लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि परमात्मा दी रोम दी किरण जिसनु प्रकाश और आवाज किया वह नहीं मिलेगा। उचले मंडलां ते ड्यूटियां भी मिल जाणगियां, उन्हां ड्यूटियां दे विच है की है? तन और मन का पिंजरा नहीं है? विचार करके देखो, इस जगत विच असी खज्जल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन साडे नाल लगा। यह मन अगर इत्थे करतूतां कोलन तो बाज नहीं आया तो उन्हां मंडलां दे भी सानू पार जान देगा, परमात्मा की भक्ति करन देगा? कितना लुभावना अट्रैक्शन दिता गया, विचार करके देख लो। असी फसण दा ही काम कर रहे हैं, निकलण दा नहीं। जिस विद्यार्थी ने एक छोटे जे समय दे भी 10-15-20 साल दे विच अपना उद्धार नहीं कर सकिया ते लखां सालां दी उमरां लै करके लखां वरिया दा हजारा साल कौन करेगा तपस्या उस अकाल पुरख परमात्मा दी? इत्थे ते दुख मौजूद ने, दुख दे नाल हो सकदा परमात्मा दी असक्ति आ जाए, उत्थे ते आओ जे दुख ही कोई नहीं, सुख ही सुख नूं भोगदे होए कदों उस नूं उस अकाल पुरख परमात्मा दी याद आएगी? असी ड्यूटियां दे विच ही खज्जल होना चाहुंदे आ, और ड्यूटियां नहीं परमात्मा सानू दे दिंदा। ब्रह्मा नूं ड्यूटी मिली है ਭਾਂਡੇ ਘੜਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਹਸਤੀ ਹੈ।
ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨੇਕ ਜਾਨ ਦੁੱਖ ਪਾਈ,
ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨੇਕ ਜੋਰ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜੂਨ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਕਤ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 6-6, 8-8 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਦ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਖੇਦ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੇਦ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਖੇਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਦ ਮੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਧਾ ਖੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਦ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਦ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਆ, ਸਭ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਪਣ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਭਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਿਮਾ ਗਈ ਸਚ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ।
ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛਿਮਾ ਗਈ, ਛਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਯਾਨੀ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਖਾਇਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਬਈ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ।
ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਔਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਵ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ।
खेप निभाई बोतला कर आए पतिवंत।
जिसने लाभ रूप एक काम कर लिया यानी कि नाम रूपी खेप नु प्राप्त कर लिया, खेप के अंदर व्यापार नु यानी कि ऐसा व्यापार हो गया यानी कि नाम मिल गया तो कहते बहुत सारा लाभ प्राप्त करके ये जीवात्मा पतवंत दे कार यानी कि पति दे कार अकाल पुरख कोल पहुंच जाती।
खरा दिलासा गुर दिया मिले भगवंत।
ये खरा दिलासा पूरन सतगुरु ही देंदे ने कि ये जीवात्मा इस शब्द नु नाम नु प्राप्त करके सदा ले उस परमात्मा नु मिलन दे काबिल हो जाती है।
आपन किया करे आप आगे पाछे
कहने रे सृष्टि दा सारा खेल उस एक आप दा चलाया होया है, वो आप ही चला रहा, आप ही सब नु आधार दे रहा और आप ही सब नु खत्म कर रहा।
नानक सो सराये जी कट कट रही अभियान।
कहने रे अपना वो कार्य खिन खिन करके उसनु चुका दे जिसने तेनु ए रास पूंजी दिती सी। साध संगत जी आज दे मजमून दे विच गुरु नानक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिता, कोई भ्रम नहीं रखिया, कोई भेद नहीं रखिया, संसार दी एक मिसाल दे करके उन्होंने इस शब्द दे विच बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वो वासदेव सब दे विच मौजूद है, तुसी उस तो बच नहीं सकते। असी जड़े कर्म कर रहे हैं छुपाव दे कारण की है कि असी मर्यादा तो बाहर काम कर रहे हैं। अगर कर्ज दी इतनी सख्त मर्यादा ऋषि मुनि संता ने इस जगत नु दिती सी, अगर सानू ये याद होंदी उस मर्यादा ते कायम होंदे ते याद रखो असी रूहानियत दे इस मजमून नु भी समझ जांदे यानी कि कर्ज चुकाण दा काम करदे। असी इस जगत दे विचो भौतिक धन दे प्रति बेईमान होए आ ते विचार करके देख लो उस नु प्राप्त करन लई असी ईमानदार किस तरीके नाल हो सकदे आ। और इस जगत दे विच इस धन दे प्रति भी बिल्कुल स्पष्ट उपदेश आया कि जद तक देण वाला इन्हां नु बख्शेगा नहीं बख्शे नहीं जा सकते, यानी कि वह देने वास्ते जन्म लैणगे ते तैनू लैण वास्ते जन्म लैणा पेगा। पिछे अदालत विच गुरु नानक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट करता सी कि संता दे अदालत विच बख्शिया जांदा यानी कि देने वाले नू बख्शना पैंदा, अपना की कर्म करना पैंदा यानी कि उसनू भजन भी गवाना पैंदा। अगर वह इस धन नू याद रखदा वस्तु नू याद रखदा ते तन दा भी रोग लग जांदा यानी भजन भी गया तन दा रोग भी लग गया और जन्म भी लेना पिया ते कोई अकलमंदी दा विषय नहीं है ते इस नू रूहानियत दा विषय किया जांदा। असी ऊंट वांग मुंह चुकिया कि असी रूहानियत दे बड़े उच्चे ओहदे कार हां ते विचार करके देख लो ये ऐसी अवस्था हैगी है तलवार दी दो मूरता ही कि जिस पासे भी पैर रखो तुहानू कटना पेगा, यानी कि एक पासे वस्तु और संबंध गया, दूसरे पासे रोग भी लग गया, तीसरे पासे तुहाडी भजन भी चला गया और उसके बाद उपदेश मिलेगा कि इन्हां नू बख्श दो क्योंकि बख्शे बिना ना उन्हां दा उधार है ते ना साडा अपना उधार है। इस रूहानियत का विषय क्या ते कोई माई का लाल एक निकल करके आए इस रूहानियत दे विषय नु तारण करके अपने आप नु इस काबिल बन के दिखाए। ये बगलिया की भक्ति ते अनंत काल तो बड़े ऋषि मुनिया ने भी की और असी भी कर रहे हैं। ये बगलिया की भक्तियां कभी पार ले जाने के काबिल नहीं बन सकनगियां। तो जिसने ऋण चुकाने की गल जान ली कि किस तरीके दे नाल चुकाया जाता और जिंदे जी का मजमून है, मरण के बाद कोई ऋण नहीं, मरण के बाद तो निचली उचलियां जूना ने सिर्फ भुगतान मात्र है ते जिंदे जी अपने कर्ज नु चुका लो और उस अकाल पुरख गुरु परमात्मा को लो अपने आप नु बख्शवा लो। मरण दे बाद कोई बख्शा नहीं गया ना आज तक बख्शा जा रहा ते जिंदे जी ही असी बख्शवा करके इस रूहानियत दे मजमून नु तारण करन दे काबिल बन सकते हैं। तो साध संगत जी गुरु साहब जड़ी वाणी लैंदे ने उहदे कुछ तुकां भी लैंदे ने, कुछ मसाला भी दिंदे ने। गुरु साहबां दा सिर्फ इतना भाव हुंदा है कि रूहानियत दे उस अंग नु अच्छे ढंग नाल सानू समझा सकण। इस तो अगे कोई भी उन्हों का भाव नहीं, ना किसी की निंदा या वड्याई, ना कोई नवा मत या धर्म चलाना। बेशक यह सारी प्रक्रिया किसी ना किसी देश जात मजहब कौम के नाल संबंध रखती है, पर गुरु साहबा का भाव सिर्फ अपने मजमून नु स्पष्ट करना। कोई भी इस प्रक्रिया का कुछ होर अर्थ कढ़दा ते यह सारे अर्थ उसकी अपनी मनमत है, गुरमत का इन्होंने अर्थों के नाल कोई भी संबंध नहीं है।